करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश करके तपस्या
शांति। हम सब के बीच में आदरणीय तपस्वी मूरत, ज्ञाननिष्ठ, विश्व सेवाधारी आदरणीय शिलू दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति से ही एक दिव्यता, एक अलौकिकता वातावरण में छा जाती है। आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आप 1969 में विश्व सेवा के लिए विश्व पिता के पास समर्पित हो गए। आपने 1976 से मधुबन मधुर भूमि, तपस्वी भूमि, कर्मयोग की भूमि में रहना शुरू किया और आपने मधुबन बेहद घर से विश्व के पांचों महाद्वीपों में सभी देशों में आपने शिव पिता का संदेश और आप जैसे राजयोगी भाई बहनों की पालना दी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब सेवाएं शुरू हुई तो आदरणीय दीदी ही प्रथम कुशल, प्रखर, दिव्य बुद्धि वक्ता थीं, जिन्होंने जी न्यूज के ऊपर जीवन मूल्यों का सबसे पहले सीरियल चलाया था। ऐसी महान हस्ती आज हम सबको इस संपूर्णता संपन्न भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य देने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी ब्रह्मावत्स अपने आप को ऐसी महान, शक्तिशाली, बाप समान बनने वाली तपस्वी मूरत दीदी को पाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करूंगी कि वो हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य पर अपनी अनुभूति युक्त सार गर्भित वक्तव्य महावाक्य उच्चारित करें। आदरणीय दीदी,
मेरे पहले मैं चाहूंगी कि कविता बहन भी अपना परिचय दे आप सबको, जो आपकी ये तीन दिन टीचर रहेगी, आपकी सारी भट्टी की पूरी व्यवस्था देखेगी, सुचारू रूप से चलाएगी और इसको सफल बनाएगी। कविता बहन।
जैसा दीदी ने कहा, दीदी का तो ये बहुत बड़प्पन है। मैं तो सेवाधारी हूँ, बाल्यकाल से ही बाबा की बच्ची बनी और विगत 40 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में जुड़ी हुई हूँ। वर्तमान समय भरतपुर आगरा क्षेत्र की सेवाओं पर सेवारत हूँ।
बहुत सुंदर सेवाएं कर रही है। अभी भी मैं व्हाट्सएप में देखकर आई आपने क्या रक्षाबंधन पर बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, अभी अभी मैं देख के आई। थोड़ा दो शब्दों में सुनाओ क्या किया।
करण करावन हार तो बाबा है, लेकिन हमारी छोटी मीटिंग होती है टीचर्स बहनों की, तो उसमें इस बार ये संकल्प लिया गया था भट्टी में ही कि हमें अपना ग्रुप बनाकर एक संकल्प में से पुरुषार्थ को करना है। तो उस पुरुषार्थ के अंतर्गत हमारा जो चल रहा है ये क्वार्टर मंथ, वो चल रहा है एवर रेडी का। तो मुझे नहीं मालूम था इस प्रोग्राम में मुझे आना है। अचानक मुझको 6 तारीख को प्रोग्राम मिला और मैंने बिना पूछे ये कहा एवर रेडी होने के नाते हाँ जी। उसके बाद मैंने सेंटर पर बहनों से पूछा कि रक्षाबंधन के दिन ही मुझे जाना पड़ेगा तो आप कैसे इसे संभालेंगे। लेकिन कहते हैं करण करावन हार बाबा है, यदि हम बड़ों की बात में हाजी करते हैं और ईश्वरीय यज्ञ के कार्य में मददगार बनते हैं तो वो वैसे ही सारे कार्य हो जाते हैं। इस बार हमने देखा हम 40 वर्षों से भरतपुर महाराजा की सेवाएं कर रहे हैं लेकिन वो कभी सेवा केंद्र पर नहीं पधारे। महारानी साहिबा को तो वो दो बार भेज चुके थे लेकिन इस बार उन्होंने वॉलंटियर ऑफर करके कहा कि मैं बहन जी से राखी बंधाने सेंटर पर ही आऊंगा। वर्तमान समय वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्होंने ध्वजारोहण के बाद वहां से हमें फोन किया कि मैं आ रहा हूं और बाबा के घर आधा घंटा सबसे पहले बाबा के रूम में बैठे क्लासरूम में हमने उन्हें प्रदर्शनी का अवलोकन कराया और फिर ऑफिस रूम में उनको राखी बांधी। बहुत खुश हुए और बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा जब भी मेरी सेवाओं की आवश्यकता जहां भी होगी, हमने मधुबन आने का उनको निमंत्रण दिया तो बड़ी प्रसन्नता की बात थी। इसी प्रकार शहर के उद्योगपति मेयर वो तो हमेशा आते ही थे सेवा केंद्र पर, वो भी सेवा केंद्र पर आए। उससे पहले हमने जेल और अन्य संस्थाओं के प्रोग्राम, मतलब पिछले 7 दिन के अंदर जो संगठित संस्थाओं के प्रोग्राम थे बाहर के वो हमने किए, और रक्षाबंधन के दिन 15 तारीख को मुझे यहाँ आना था। उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक लोगों का तांता, आईपी वीआईपी बाबा के ब्राह्मण बच्चे आते ही रहे और टॉप टू बॉटम लोगों की सेवा हुई। और अन्य संस्थाओं के जिनके निमंत्रण मिले हुए हैं जैसे आरएसी है, एनसीसी है, अन्य एजुकेशन संस्थाएं हैं, उनके प्रोग्राम अगले जन्माष्टमी तक चल रहे हैं, निमंत्रण आए हुए। इस प्रकार करण करावन हार बाबा है। मैं तो यही अनुभव किया कि बड़ों ने जैसे मुझे अचानक कहा और मैंने उसे अवर रेडी ग्रुप की धारणा पालना करते हुए मैं संकल्प की कर रही थी तो मैंने हाजी किया, तो उसके अनुसार बहुत सारी अच्छी सेवाएं बाबा ने करा ली। ओम शांत।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई बहने, सर्व मधुबन निवासी और पूरा देवी परिवार, की तरफ से और मेरी तरफ से भी मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, तपस्या भूमि में, बाप दादा की कर्म भूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज पहले दिन खूब तालियां बजाओ जितनी चाहिए। लेकिन कल से नहीं बजाना, कल से तो एक हाथ की ताली। तो आप सभी इस सुंदर सुहावने मौसम में, जबकि माउंट आबू बिल्कुल सूक्ष्म वतन जैसा लगता है, चारों तरफ वर्षा होने के कारण खूब झरने बह रहे हैं, वो भी देखे होंगे ना आपने रास्ते में देखे, यहाँ फॉग में शायद न भी दिखाई दिए होंगे लेकिन नीचे से जैसे आते गए तो झरने तो खूब दिखाई दिए होंगे ना। तो काफी समय के बाद इस प्रकार की ऐसी रिमझिम देखी हमने और ऐसे सुहावने मौसम में आप सभी पहुंचे हो तो बहुत 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 भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। अपने भाग्य के लिए भले ताली बजाओ। और इसलिए भी भाग्यशाली हो क्योंकि लिस्ट तो लंबी होगी, बहुतों की इच्छा होगी आने की, लेकिन उसमें से आप ही आ सके कईयों के नाम होंगे, लेकिन अंतिम घड़ी में उनका प्रोग्राम बदल गया होगा, ट्रेन में नहीं पहुंचे होंगे और उनकी जगह जिनका नाम नहीं था वो आ गए होंगे। लेकिन हम कहते हैं जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली। आपने आते ही सबसे पहला काम तो अकोमोडेशन लिया और अकोमोडेशन रहने का स्थान लेते समय आपको ये माला पहनाई गई है। सबने माला पहनी है कि नहीं पहनी है? सबको पहननी है और पहन कर ही रखनी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप सभी भट्टी में आए हैं। क्योंकि कई प्रकार के भाई बहने आते हैं, लेकिन भट्टी के भाई बहनों के ऊपर तो पूरी नजर होती है, क्योंकि जो भट्टी में आते हैं उनको एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिलता है। वैसे तो यह माला, हम इसको विजय माला कहते हैं, ये विजय माला आपके गले में डाली गई और एक ठप्पा लगाया गया। क्या ठप्पा लगाया? आपने बैज पर पढ़ा होगा, संपन्न संपूर्ण बनने की योग तपस्या। हाँ, पढ़ा अच्छी तरह से। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है, हमें संपन्न बनना है, हमें संपूर्ण बनना है और उसके लिए यह योग तपस्या करनी है। तो योग तपस्या हमारी तब सफल होगी जब हम अगले 3-4 दिन बिल्कुल मौन भी रहेंगे। ऐसी तपस्या मौन में रहकर ही अगर करेंगे तब फलीभूत होगी। तो इसीलिए यह मौन तपस्या भी है, आवाज में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपने कारोबार से तो आप सब निवृत्त होकर के ही आए होंगे, अपने घर में सूचना भी दे दी होंगी कि हम आराम से पहुंच गए। हाँ, सबने दे दी सूचना, ऐसे तो नहीं किसने न दी हो, नहीं तो घर वाले चिंतित होंगे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। क्यों, तो आप सबने सूचना दे भी दी होंगी और अगर अभी तक नहीं दी है तो आज रात तक सबको अपने घर में सूचना भी देनी है और फिर 3 दिन मोबाइल बंद। हाँ, हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ना मोबाइल बजता रहे, और हमारी कई माताएं बहुत मीठी मीठी होती है, वो कहाँ रखा है मोबाइल वो ढूंढती रहेगी। हाँ, ढूंढती रहेगी पर्स में, और उनको ये भी कई बार पता नहीं चलता है मेरा ही बज रहा है ऐसे भी होता है, फिर इसको बंद कैसे करना है वो भी नहीं पता चलता है। तो इसीलिए किसी को न पता हो तो दूसरे से पूछ करके बंद कर दो। 3 दिन कोई बातचीत नहीं करनी है किसी से भी, क्योंकि आप बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर आ गए हो। जैसे 14 साल भट्टी चली यज्ञ में, तो उस समय दुनिया की निगाहों से बिल्कुल दूर थे। दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन आया, नक्शा बदल गया सब दुनिया का, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, न जाने क्या क्या उन दिनों में, उन 14 सालों में घटनाएं हुई, विश्व युद्ध हुआ, लेकिन बाबा के बच्चे वहां तपस्या कर रहे थे और उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, नहीं तो लाखों लोग मारे गए उस समय। तो बहुत कुछ, खून की नदियां भी बही, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों के आगे ऐसा रक्षा कवच बना लिया था जो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। तो मधुबन तो वैसे ही भगवान की भूमि है, जहाँ परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का की जैसे नींव डाली, और ऐसी भूमि पर आप सभी 3 दिन तपस्या करने आए हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी भाई बहने होंगे जो कभी अभी तक मधुबन में एक रात भी रहे नहीं है, क्योंकि शांतिवन बना जब से तब से नीचे ही रहते हैं और ऊपर आए होंगे 4 धाम की यात्रा करने, लेकिन मधुबन यहाँ कभी एक रात भी नहीं रहे होंगे, जो बिल्कुल नहीं रहे हैं एक रात भी, वो हाथ उठाए देखो, ये तो सारे ही पहली बार मधुबन में रह रहे हैं। तो अपने लिए जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए ताली बजाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब से शांति वन बना तब से यहाँ तो इतनी जगह भी नहीं है जो इतने सबको हम समा सके, लेकिन इस साल या दो कुछ सालों से यहाँ भट्टी चल रही है, भट्टियाँ चल रही है। तो अभी पिछले मीटिंग में यही निश्चित नहीं हो पा रहा था कि भट्टियाँ रखें या न रखें, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी, बहुत तंगी थी, बहुत ही बहुत, हाँ बहुत कहो तो बहुत ही बहुत। और ये संकल्प था कि क्या करें, रखें या न रखें। फिर भी चलो मुन्नी बहन कहे कि इतना इतनी डिमांड थी, तो हमने कहा चलो हम डेट्स दे देते हैं, अगर बारिश हुई तो रखेंगे, नहीं हुई तो मना भी नहीं, मना भी कर सकते, इसमें क्या, तो कोई बात तो नहीं है, टिकट अपनी कैंसिल कर देंगे, कोई बात नहीं है, इसलिए रख तो दी। लेकिन बाबा ड्रामा सब मेहरबान हो गए और खूब पानी बरसा। और कल परसों तक तो कह रहे थे नकी लेक जब पूरा भर जाए, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, तब गरम गरम हलवा, गरम गरम पकोड़ा सबको खिलाएंगे। पिछले साल तो नहीं शायद भरा था इतना, डैम्स भी नहीं थे क्योंकि पिछले साल इतनी बारिश नहीं भी होती याद नहीं, लेकिन फिर भी कम थी। तो इस बार तो सब कुएं खाली हो गए, सब बोरिंग खाली हो गए, सब कुछ खाली हो गया था, और हमारे डैम्स है वो भी खाली हो गए थे। नक्की लेक से पानी भरते थे माउंट आबू में देने के लिए, और यहाँ तक नौबत आ गई कि होटलों को भी कहा कि अभी होटलों को भी पानी नहीं, होटल बहुत है यहाँ माउंट आबू में, इतने टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ तक नौबत आ गई कि ये टूरिस्ट को भी रोक देंगे क्योंकि पानी नहीं है, आबू में पानी नहीं है। तो जुलाई का महीना नहीं तो बहुत बारिश होती है पर एकदम सूखा गया, परंतु अगस्त में तो बाबा ने खूब रिमझिम करवाई तो बारिश हुई। तो ऐसे समय पर आप आए हो, वैसे तो पहले तो बहुत बारिश पड़ती थी और अगस्त महीने के लिए कहते थे अगस्त इज डिसगस्ट, डिसगस्ट इंग्लिश शब्द है ये, इतना परेशान हो जाते थे बात मत पूछो, इतनी फॉगी, इतनी फॉगी जो एक फीट की दूरी पर कौन खड़ा है ये पता नहीं चलता था। और बाबा कई बार मुरली में वर्णन करते हैं कि फॉगी के समय पहाड़ों पर चले गए थे और वहाँ रास्ता ही भूल गए थे, है ना, बाबा मुरली में सुनाते हैं। तो फिर कैसे पहुंचे, क्योंकि सुबह सुबह बेगरी पाठ का समय था, नाश्ता तो बनाते नहीं थे, तो बाबा पहाड़ों पर ले जाते थे, उस समय करौंदे होते थे, आम होते थे, चेरी होती थी, बहुत कुछ पेड़ों में लगे रहते थे फल, बस वही खाते थे, सवेरे का नाश्ता वही होता था। तो जब वापस आने का समय हुआ तो इतनी फॉगी आ गई, सुबह तो नहीं होगी और रास्ता ही भूल गए, तो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो फिर एक संदेशी बहन को, साकार बाबा थे वो भी चले थे, तो साकार बाबा ने वो संदेशी को कहा कि जाओ बाबा के पास, वतन में जाओ। और बाबा को पुकारो, बाबा हम रास्ता भूल गए कैसे जाएं वापस। तो गई वो संदेशी, बाबा ने कहा तो गई, और बाबा ने उनको कहा बच्ची घबराओ मत, बस ये थोड़ा दाएं तरफ जाओ या बाएं तरफ जो कुछ कहा इससे जाओ, वहां आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा और वो आपको रास्ता दिखाएगा, ये बाबा ने उसको संदेश में कहा। और उसी अनुसार उन्होंने किया, सचमुच एक व्यक्ति आ गया, नहीं तो कौन आएगा उस समय, लेकिन वो आ गया, वो ये यहाँ के भील लोग होते ना, तो वो आ गया, क्योंकि यहाँ तो कोई इतनी बस्ती भी नहीं होती थी, तो वो आ गया और उसने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे बाबा से पूछना पड़ा वतन में कैसे हम यहाँ से जाएं बाहर। तो बाबा भी कहते ये माया की फॉगी है, इससे रास्ता भटक गए है। तो यहाँ आप आए हो और बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि संगम युग अति प्यारा तो लगता है, बाबा साथ है, देवी परिवार साथ है, ज्ञान योग हम करते रहते हैं, योगी जीवन बना लिया है, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। ये याद की यात्रा बाबा कहते हैं, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? संपन्न संपूर्ण बन घर लौटना है। ऐसे न हो कि संपन्न संपूर्ण न बने और घर जाने का समय आ जाए, तो बाबा कहते हैं मानी और मोचरा, मुरली में आता है ना, तो मोचरा खाना होता है, मोचरा होता है ना, चप्पल जूता लगाते हैं और थोड़ी सी रोटी दे दी, लो खाओ, जैसे कुत्ते को पांव लगाया और खाओ, वो तो कुत्ता तो खा लेगा, उसको क्या, लेकिन मनुष्य कितना, कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी कि किसी को मारो और फिर खाना खिलाओ, और वो भी क्या। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी इंसल्ट ना हो कि धर्म राजपुरी में जब जाएं तो हम सजा खा करके फिर घर जाएं, और क्योंकि पावन बने बिना तो घर जा नहीं सकते, संपूर्ण तो बनना ही है। तो दो तरीके हैं, एक है योग बल, दूसरा है सजा बल। तो अगर योग बल से नहीं तो सजा बल ही होगा, तो सजा बल से अगर होगा तो फिर पद तो कम हो ही जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी में, या धर्मराज भी हमें सल्यूट करे, सल्यूट करते ना बड़े लोगों को, तो वो सल्यूट करे कि ये कितनी महान आत्माएं हैं, और स्वागत करे, आयजान करे, और कहे कि चलो अभी आपको स्वर्ग द्वार में जाना है। वैसे शास्त्रों में तो इसकी बहुत बड़ी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां है, तो हम सबके लिए, सबकी ही। तो बाबा हमसे ये चाहते हैं कि संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। कई हमसे पूछते हैं दोनों में अंतर क्या है, संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे। तो बहुत सहज है समझना, जैसे देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं, सर्व गुण संपन्न। तो किस में संपन्न बनना है, गुणों में। फिर सर्व 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण किस में बनना है, कलाओं में। कला माना जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है तो पूर्ण मासी कहलाती है, तो वो संपूर्ण चंद्रमा होता है। तो 16 कला संपन्न माना सर्व कलाओं में संपन्न। एक होता है गोलाकार, वो 16 दिन लगते हैं पूरा गोल होने में, 16 कला संपूर्ण बनने में 16 दिन लगते हैं, एक एक दिन एक एक कला बढ़ती है और 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। तो वो फुल जो है ना, गोल सर्कल, ये कहेंगे संपूर्ण। और सर्व गुण संपन्न, वो जो लाइट होती है प्रकाश चंद्रमा में, वो फुल प्रकाश पूर्णमासी पर होता है। तो पूर्ण माना सर्व गुणों में संपन्न, एक भी गुण की कमी न हो। और कौन से गुण, आदि गुण और अनादि गुण। आत्मा के अनादि गुण भी हैं तो आदि गुण भी हैं। वो अनादि गुण आत्मा के, वो हमारा आधार है, जो 7 मूल गुण कहते हैं ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण ये आत्मा के अनादि गुण है। तो और इन्हीं अनादि गुणों पर ही आधारित है सारे संसार के जो भी गुण है, मूल्य जिसको हम कहते हैं, तो पारिवारिक मूल्य कहो, सामाजिक मूल्य कहो, नैतिक मूल्य कहो, या कोई भी प्रकार के किसी भी संस्था के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी कार्य के लिए, वो मूल्य बहुत जरूरी है। तो वो हो गए हमारे ये अनादि गुण। लेकिन आदि गुण फिर कौन से कहेंगे, जो दैवी गुण है, वो दैवी गुण, देवताओं के गुण। 36 लक्षण बताते हैं, 56 भी बताते हैं, 36 भी बताते हैं, 56 प्रकार का भोग बताते हैं, 36 प्रकार का, ये सारे देवी गुण हैं, वो लिस्ट यहाँ लगी हुई है, देखिए ना आपने गुणों की लिस्ट। तो ये सारे जो गुण हैं वो दैवी गुण हैं, और ये देवताओं के अंदर स्वाभाविक रूप में है। लेकिन ये गुण कैसे आए, क्योंकि कलयुगी दुनिया में तो हम देखते हैं एक भी ये गुण नहीं है, एक भी नहीं। सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, निर्भयता, सरलता, हाँ ये सारे दैवी गुण हैं। आज देखो सब उसका उल्टा है ना, उल्टा। सहनशीलता को तो मनुष्य क्या समझते, ये तो कायरता है, मैं क्यों सहन करूं, मैं कोई कम हूं क्या लड़ना शुरू कर देते हैं। तो लड़ना शुरू करने का मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि सहनशीलता नहीं है। तो जो चीज एक शक्ति है उसको मनुष्य आज कायरता समझ रहे हैं, जो विकार ये विकृति है वो उसको मनुष्य उसको स्वाभाविक समझ रहे हैं। ये काम विकार तो जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, मोह तो होगा ही ना, अभिमान तो होगा ही ना, ये तो सब है ही, सब नॉर्मल है। हम तो मनुष्य है ना, हम कोई देवता थोड़ी बन गए हैं। मनुष्य तो भूले करेंगे, और भूले करेंगे तो बस हम भूले करने वाले, भगवान क्षमा करने वाला, ऐसे ही कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। भूले करना ये तो मनुष्य का धर्म है, हम कोई भगवान थोड़ी है, हम कोई देवता थोड़ी है, हम तो मनुष्य है, भूले करेंगे। लेकिन क्षमा करना ये भगवान का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ, भूले करना, और भगवान का धर्म क्या हुआ, क्षमा करना। तो भगवान कहते इतना सस्ता सौदा नहीं है, क्योंकि जो करेगा वो तो पाएगा ही। इसीलिए ये नहीं कि हमने क्षमा मांग ली और मिल गई क्षमा, चलो फिर भी अगर क्षमा मिलती भी है लेकिन इस शर्त पर मिलती है कि दोबारा ना करें। ऐसे होता है ना, बच्चा अगर कोई भूल करता है तो सॉरी कहता है, मम्मी कहेगी सॉरी बोलो, चलो सॉरी कहता है, पर फिर कर दी, अब कब तक मम्मा सहन करेगी, कहेगी सॉरी सॉरी कहते हो तो चेंज भी लाओ ना, अपने अंदर परिवर्तन भी लाओ। तो हम लोग भी क्या करते थे, भूले की फिर भगवान से माफी मांगी, फिर जाकर के फिर भूले की फिर माफी मांगी, यही समझा ना, यही तो भक्ति होती है। फिर यही कह दिया विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो हमने अपने आप को विषय विकार करो का काम दिया और भगवान को हरो का काम दिया। हम विषय विकार करें और भगवान को कहा तुम हरो, हम करें और वो हरे। हाँ जैसे बच्चा होता है ना, गंदगी करता और मम्मी को कहता मम्मी तुम साफ करो, तो मम्मी कहती मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या तुम साफ करो, तुमने गंदगी की है तुमको ही साफ करना है। माँ सिखाएगी ना बच्चे को। तो हम विषय विकारों में पढ़ते रहे और भगवान को कहते रहे कि आप हरो, तो हम करें और वो हरे। लेकिन ये हम अभी तो समझते नहीं, ये सब अज्ञान था। तो भगवान ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया कि बच्चे तुम कितने ऊंचे थे, घर में भी थे परमधाम में तो भी कितने ऊंचे थे, और सतयुग में भी आए तो कितने ऊंचे थे। फिर बाबा पांच स्वरूपों की स्मृति दिलाते हैं, द्वापर में भी तुम्हारा पूज्य स्वरूप है, कितनी तुम्हारी भक्ति होती है। फिर संगम पर तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्राह्मणों का भी कोई भी शुभ कार्य में ब्राह्मण जब तक न हो तब तक वो कार्य संपन्न होता ही नहीं है। फिर तुम्हें फरिश्ता बनना है, फरिश्तों का भी गायन है, तो एक तरफ है फरिश्ते और दूसरे तरफ है देवियां, ये हमारा ही गायन है। पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों की बहुत महिमा होती है, क्रिश्चियनिटी में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में फरिश्ते दिखाते, एंजल्स दिखाते हैं, और भारतीय संस्कृति और पूर्वी संस्कृति में देवियां दिखाते हैं। तो वो देवियां कहो या फरिश्ते कहो, बाबा कहते वो तुम्हारी अंतिम संपूर्ण स्थिति होगी। जब तुम्हारा संपूर्णता का साक्षात्कार लोगों को होगा, आपका फरिश्ता रूप का साक्षात्कार होगा, तो पूर्वी दुनिया में देवियों का साक्षात्कार होगा, सब बुद्धिज्म के अंदर या जो भी देखिए वहां देवियां बहुत दिखाए। तो तो उनका अलग ही स्वरूप होता है, बुद्धिज्म के अंदर है, वहां भी मूर्ति पूजा बहुत है जैसे भारत के अंदर है। तो इसी प्रकार उनको वो साक्षात्कार होंगे और उसी का ही यादगार है। और बाबा कहते ये तुम बच्चों का ही यादगार है, तो तुम ही फरिश्ता बनते हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता बन करके फिर घर जाएंगे, घर जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। लेकिन बाबा कहते कोई मुश्किल नहीं है संपन्न संपूर्ण बनना, बस क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, बस फॉलो फादर बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, तो संपूर्ण बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए बस एक ही तरकीब बाबा बताते हैं, क्या है, जो भी कर्म करो उस समय शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, एक तो शिव बाबा की याद में हो और दूसरा ब्रह्मा बाबा अगर इस समय होते तो वो क्या करते, वो बुद्धि में लाओ, तो उनके कदमों पर हमें चलना है। जब ये हम बुद्धि में लाएंगे तब हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा देखो 33 वर्षों में संपन्न बन गए, 1936 36 से लेकर 1969 तक, 69 तक, 33 साल, हाँ यही कहेंगे ना। तो कैसे बने, क्या उनमें ऐसी विशेषता थी जो इतना जल्दी संपूर्ण बन गए। इसका मुख्य कारण यही था कि ब्रह्मा बाबा के अंदर एक बहुत बड़ा संस्कार था और वो था अभी करना है, अभी 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 नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कई बार हम अव्यक्त मुरलियों में सुनते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का संवाद, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते हैं कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं बने हैं संपन्न संपूर्ण, अभी तक हाँ इतने ढीले क्यों हैं पुरुषार्थी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को आश्चर्य लगता है, हाँ ब्रह्मा बाबा बन गए और बच्चे अभी तक ढीले ढाले हैं, क्योंकि जब तक ढीले ढाले रहेंगे विनाश कैसे होगा, विनाश तो खूब तैयार हो गया है पूरा, इतने हथियार बन गए हैं, बस एक दो को धमकियां ही देते रहते हैं ना, अभी हो रहा है इंडिया पाकिस्तान क्या हो रहा है, धमकियां ही दे रहे हैं। अभी तक तो भारत यही कहता था कि हम पहले कभी नहीं शुरू करेंगे, अगर पाकिस्तान ने थोपा तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज तो जो हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तो पहले कहा था लेकिन अभी हम बदल देंगे, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई करेगा तब हम करेंगे, हम भी कर सकते हैं। तो डराया है पाकिस्तान को। आप सोच सकते हैं कि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, अणु बम उनके पास भी हमारे पास भी है, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। हालांकि बाबा कहते हैं भारत में तो अणु बम पड़ना नहीं है, यहाँ क्या होना है, यहाँ तो गृह युद्ध होना है, क्योंकि भारत तो अविनाशी भूमि है, इसलिए अविनाशी भूमि पर तो एटम बम तो गिरना नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया में तो होना ही है, इसलिए वो तो वो भी तैयार बैठे हैं, अमेरिका रशिया तैयार बैठे हैं, सब तैयार बैठे हैं, उधर सीरिया देखो, उधर ये देखो, सारे चाइना देखो, अगर थोड़ा न्यूज सुनते ना तो लगता है बस कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, इतना एक दो को धमकियां देते रहते हैं, क्योंकि हर एक समझता मैं कम हूं क्या, मैं कम हूं क्या, हा? तो शेर हो तो मैं सवा शेर हूं, इसीलिए हम भी कम नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते वो तो तैयार बैठे हैं, पर कमी किसकी है, क्यों इतनी देरी हो रही है, किसकी कमी है, हा? किसकी देरी है, हम बच्चों की। तो जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये इतनी देरी क्यों हो रही है, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथत देते हैं, बच्चे होगा सब ड्रामा अनुसार होगा, इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ड्रामा कहते हैं, और ब्रह्मा बाबा को लगता है अभी करना, अभी करना है। ये ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा संस्कार था, बच्चों को काम देते थे कोई भी काम, और अगर बच्चे ढीले ढाले हो और बाबा को कहते बाबा नहीं हो सका, जगदीश बाई का एक बहुत सुंदर अनुभव था, जगदीश भाई के समय जब आए थे पहली बार, तो तीन भाई साथ में थे और तीनों को बाबा ने काम दिया कि एक पर्चा बनाओ, उसमें क्या लिखत हो कुछ उस समय बाबा ने कहा, तो बच्चे कल सुबह तक ले आना, बाबा देखेंगे। अब क्या हुआ, तो रात को बत्ती चली गई, बिजली थी नहीं। अब बिजली नहीं थी तो कहाँ से करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वो तो सो गए, दो तो सो गए, लेकिन जगदीश भाई नहीं सोया। जगदीश भाई ने कहा कि बाबा ने कहा कल सुबह लाना और जरूर मुझे लाना है, लेके जाना है, मुझे लिखना है। तो उसने क्या किया, मोमबत्ती ली और मोमबत्ती के सहारे उसने लिखा, जबकि बिजली नहीं थी, बत्ती नहीं थी, और लिखा। तो सवेरे जब बाबा ने पूछा बच्चे लिखा, और दोनों ने क्या कहा, बाबा लाइट नहीं थी ना, बहाना तो मिल गया, लाइट नहीं थी। और जगदीश भाई लेकर गया तो बाबा ने कहा बच्चे लाइट तो थी नहीं, कैसे लिखा। तो उसने कहा बाबा मोमबत्ती ली, इसमें क्या है, मोमबत्ती लेकर के अलग से मैंने बैठ के लिखा। तब बाबा ने जगदीश बच्चे को ये वरदान दिया कि आप सब बाबा के ज्ञान की किताबें लिखेंगे। तो देखो कितना बड़ा वरदान मिल गया। उसके पहले जगदीश भाई कहते थे मुझे कोई इतनी कला नहीं थी, लेकिन बाबा ने जो वरदान दिया उस वरदान से मैं कैसे लिखता रहा, बाबा ही लिखवाता था। तो ये कैसे हुआ, जब बाबा का आज्ञाकारी बना, तो ये एक बहुत बड़ा सबक हम उनसे सीख सकते हैं। तो बाबा भी देखो हमको रोज रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, आत्मा समझ मुझे याद करो। कई बच्चे यही कहते, बाबा तो रोज रोज यही कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा के बच्चे ये कहते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं, आप लोग सारा आत्मा परमात्मा ही बोलते रहते हो, आप लोगों को और कुछ आता है आत्मा परमात्मा ही बोलते रहते हो। और भगवान ही हमें यही कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो। और बाबा कहते मैं तब तक कहता रहूंगा, मैं कब तक कहता रहूंगा, जब तक तू बने नहीं हो, क्योंकि यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है। पहला पाठ भी यही है क्योंकि यही तरीका है। हमको एक दो घंटे के तो योगी नहीं है ना, एक दो घंटे के योगी हो भाई, हम एक दो घंटा बैठे हठ योग कर रहे हैं और हम तो योगी है, लेकिन हम तो सदा के योगी है, निरंतर योगी है। तो 24 घंटा ही हमारी योग अवस्था होनी चाहिए, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हर कर्म करते, क्योंकि कर्म योगी भी है, केवल योगी तो नहीं ना, कर्म योगी भी है, ज्ञान योगी भी है, सहज योगी भी है। तो योगी केवल एक घंटा बैठ करके योग तपस्या करे, यही तो योग नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको तो हर वक्त ये अनुभव करना, मैं आत्मा इस शरीर से काम कर रही हूँ, मैं करावनहार हूँ, ये इंद्रियां करणहार है। कभी बाबा कहते हैं मैं करणहार हूँ, बाबा करावनहार है, ये प्रैक्टिस हो। तो ये प्रैक्टिस ही आत्मा स्थिति का अनुभव कराती है और बाबा की याद दिलाती है, लेकिन ये निरंतर रहे। नहीं तो बाबा को क्यों कहना पड़ता है कि जब बाबा के सामने आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, और जब बाहर जाते हैं तो सब सोडा वाटर हो जाता है। घर गए, पत्नी का मुंह देखा, बाबा ने एक उंगली में कहा था, तो क्या होता है। मैं आपको बताऊं, एक किस्सा सुनाती हूँ। एक भाई आया था योग शिविर में, तो योग शिविर में आया था तो उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्से वाला था। कहता है बहन जी मुझे ऐसी युक्ति बताओ मेरा गुस्सा चला जाए, बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो अभी उस समय जा रहा था और कहता है मुझे कुछ बताओ। तो मैंने उसको एक ही टिप दिया, मैंने कहा जब भी आपका अंदर में गुस्सा आए ना, तो उस समय आप कहो ओम शांति, बस इतना ही कह सकी और तो क्या समझाऊंगी। उस समय कहो आप ओम शांति, ओम शांति कहेंगे ना तो गुस्सा आपका चला जाएगा। अब जब घर गया तो सबसे पहले तो पत्नी ने कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो पत्नी को कहता है ओम शांति। फिर माँ ने कुछ कहना शुरू किया ओम शांति। अब देखो धीरे धीरे वो ओम शांति की जो शक्ति थी ना इंटेंसिटी बोलने की, वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर किसी ने कहा तो ओम शांति तो ओम शांति इतना गुस्से से कहा तो ओम शांति भी गुस्से से, देखो बताओ ओम शांति गुस्से से कहना होता ही क्या, लेकिन आदत है तो कहता है ओम शांति लेकिन गुस्से से। तो देखो ये तो तरीका नहीं है ना। तो ओम शांति माना सचमुच स्वधर्म में टिकना। तो जब बाबा कहते हैं ओम शांति तो केवल ये कहने तक तो नहीं है ना, दुनिया में तो यही कहते हैं, मिलेंगे राम 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 जय श्री कृष्ण राधे श्याम या जो भी आपस में मिलते हैं तो भगवान का कोई नाम लेते हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी यहाँ ओम शांति कहती है तो लोग तो हम लोगों के कहते ओम शांति वाले है, वो बैज भी देखते ना ओम शांति, ये ओम शांति वाले है। ये ब्रह्मा कुमारियां ये नहीं कहते ओम शांति वाले, तो ओम शांति वाले कितने शांति में होने चाहिए, दूसरों को भी शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं तो हमें कितना शांति में रहना है। लेकिन बाबा कहते बाबा की जब मुरली सुनते हैं सेंटर पर जाते हैं या मधुबन में आते हैं तो खूब उमंग रहता है, बहुत नशा चढ़ता है, और जैसे बाहर गए हा? सोडा वाटर। अब यहाँ तो सोडा वाटर नहीं होगा ना यहाँ तो पूरा ही भट्टी में पकना है, 3 दिन लगातार भट्टी में पकना है, भट्ठे में, भट्ठा होता है ना, इतनी आग उसमें होती है। तो इतनी आग में कोई भी चीज पड़ी वो चीज का नाम रूप रंग गुण सब बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। कोयला डाला तो कोयले के रूप में थोड़ी निकलता है, क्या निकलता है, क्या कौन सा शब्द कहते हैं, राख, तो कोयला राख बन गया तो नाम भी बदल गया रूप भी बदल गया, इतना काला काला थोड़ा वो ग्रे हो जाता है, ऐश हो जाता है, रंग भी बदल गया रूप भी बदल गया गुण भी बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। जैसे आग में कोई चीज पड़ी, टमाटर बैंगन वो आलू डालते हैं वो कितना कठोर होता है, लेकिन जैसे आग में डाला वो बर्था बन जाता है, देखो नाम ही बदल गया बर्था हो गया। तो उसको आलू टमाटर बैंगन थोड़ी कहेंगे, बर्था कहेंगे, ऐसे किया तो नरम हो गया। तो कैसा भी कठोर संस्कार, कैसा भी कठोर संस्कार हो वो बदल जाए, तो कठोर संस्कार भी बदलना है और कैसा बनना है, फ्लेक्सिबल, मुड़ सको मुड़ सको। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो मुड़ता है वही जिंदा है और जो अकड़ता है वो उसकी, वो किसकी पहचान है, वो मुर्दे की पहचान है। तो जो अकड़ा रहता है वो कठोर होता है, कठोर इतना हो जाता है जो वो मुड़ नहीं सकता है। तो फ्लेक्सिबल, ये भी बाबा हमें सिखाते हैं, बालक कब बनो मालिक कब बनो। जब अपना पुरुषार्थ है तो खूब मालिक बन के पुरुषार्थ करो, पर जब सबके साथ होते हो तो बालक बन जाओ, ऐसे नहीं मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो इसलिए उस समय बालक बन जाओ जो सबकी राय। तो इसलिए कोई कठोर चीज वो नरम हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती, टूटती नहीं है, कठोर चीज तो टूट जाएगी लेकिन नरम हो जाती है। इसीलिए देखते ना जंगल में या पेड़ होते हैं, तूफान आया तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं बहुत सख्त होते हैं वो तो टूट जाते हैं, और जो नरम नरम होते हैं वो बच जाते हैं ना, वो झुक जाते हैं। तो तूफान भले आया लेकिन वो जड़ से उखड़ते नहीं है, और बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचे तो थे लेकिन वो इतना तूफान झेल न सके क्योंकि झुक नहीं सके। तो बाबा हमें कहते हैं झुकना भी है, और वैसे भी एक्सरसाइज करते हैं तो कितना झुकते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं झुकते हैं तो ताकत बढ़ती है ना। तो हमारी एक दीदी दादी थी, क्वीन मदर उनको कहते थे, क्वीन मदर। तो बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी की लौकिक में माँ थी, बहुत स्वीट थी, बहुत ही स्वीट, रॉयल, इतनी रॉयल थी। तो जब भी कोई हम लोग जैसे जाते थे दादी के पास तो हमेशा कहती थी कि झुक झुक मर मर सिख सिख, सिंधी बोलती थी, झुक 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 मर मर सिख सिख सीखो, पहले झुको फिर मरना पड़े तो मरो फिर सीखो। बाबा की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था कहाँ तक झुके कहाँ तक मरे, कई कहते तो हमको ही मरना है क्या, लेकिन बाबा कहते करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने कम किया क्या? ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कैसे उनका सामना किया, झुक करके भी किया, अपकारी पर भी उपकार किया, कितनी बातें बाबा बताते हर मुरली में। शिव बाबा पर हमने कितना अपकार किया, पर शिव बाबा ने क्या किया, कितनी गालियां दी उस दिन भी बाबा की मुरली में, कच्ची कच्ची गालियां भी है, ऐसे भी बाबा ने कहा, पत्थर ढिक्कर में कण कण में सब में। और भगवान ने आकर के देखो ऐसे अपकारियों पर भी उपकार किया, हालांकि हम समझते थोड़ी थे कि हम कोई ग्लानी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की एक ग्लानी थी ना, कितना ऊंचे से ऊंचा भगवान और उनको कहां बिठा दिया। तो इसीलिए अपकारियों पर भी उपकार। तो कैसी भी आत्मा हो, कई बार हम कहते क्षमा करो और भूल जाओ, हम अगर किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं भूल नहीं सकते माना खुद को ही क्षमा नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम कैसे हल्के रहें, ब्रह्मा बाबा कैसे हल्के थे, तो जो भी कर्म पे देखो ब्रह्मा बाबा अगर यहाँ होते तो क्या करते, हमें भी वही करना है, क्योंकि आगे कोई विकर्म नहीं बनाना है। कल भी मुरली में था, कल की मुरली थी या परसों की मुरली थी, कोई आगे हिसाब किताब नहीं जोड़ना है, अभी और बच्चे नहीं पैदा करने हैं, करने हैं क्या, हाँ करने उस दिन परसों की मुरली में था, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, जो है उसको ही निभाना है, फंसना भी कहीं नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। एक होता ना छोड़ दिए, छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, तो क्या करना है, चौथा क्या है, निभाना है, निभाना है, क्योंकि हिसाब किताब तो हमारा ही है ना, छोड़ के भी कहाँ जाएंगे, अगर हिसाब किताब है तो फिर वो हिसाब किताब खींचेगा। बाबा मिसाल देते, उस दिन मिसाल दिया, कोई सन्यासी है वो सन्यासी छोड़ के चले जाते हैं, बहुत वैराग आ गया, लेकिन फिर घर बार बहुत याद आया, घर बार याद आया तो वापस चले गए, ऐसे भी बहुत है। तो इसलिए बाबा हमें मध्य मार्ग सिखाते हैं, ऐसा भी नहीं ऐसी बनो जैसे दुनिया में मटेरियलिज्म भौतिकवाद इतना है, वो समझते ये विकार ही स्वर्ग है, तो या तो एकदम ऐसी दुनिया में, या तो एकदम सन्यासी, एकदम या तक कि अलख निरंजन, नागे भी बन जाते ना आजकल देखे जैसे कुछ भी नहीं है, तो वो भी नहीं। बाबा हमें रॉयल्टी भी सिखाते हैं, देवता बन रहे हैं ना, बाबा हमें सादगी भी सिखाते हैं, रॉयल्टी भी हो सादगी भी हो और सुंदर भी हो। दादी जी हमेशा कहती थी सिंपल एंड ब्यूटीफुल, ये दो शब्द दादी जी कहती थी, कुछ भी बनाओ सिंपल भी हो और सुंदर भी हो, ऐसा भी नहीं जो बहुत ही खर्चा हो उसमें, और ऐसा भी नहीं हो जो लगे कि पता नहीं जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं, वो भी नहीं हो, रॉयल्टी भी हो सिंप्लिसिटी भी हो सादगी भी हो और साथ साथ सुंदर भी हो। तो मन भी इतना ही सुंदर हो, सादगी भी हो और लेकिन ऊंची स्थिति हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यही संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता हो, रहना साधारण क्योंकि खर्च कम खर्च बाला नशीन, धन व्यर्थ भी नहीं गंवाना है, ये धन भी बाबा का है। ब्रह्मा बाबा के सामने कई बातें आई, बाबा कहते थे मैं तो अपना धन दे दिया, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। लौकिक बेटा था बाबा का, दो बेटे थे, एक तो था बाबा के साथ, लेकिन जो बड़ा बेटा था उसने तो बहुत विरोध किया क्योंकि बाबा ने सब कुछ माताओं बहनों को दे दिया, विल कर दी माताओं बहनों के नाम पर, उसने विरोध किया, लेकिन बाबा ने कहा अभी मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये भगवान ने जो हमें श्रीमत दी उस श्रीमत अनुसार हमने की, क्योंकि बाबा की अपनी प्रॉपर्टी थी, बाबा की बिजनेस थी, पिताजी तो बहुत सिंपल थे, साधारण गांव के अंदर रहते थे, पहले गांव का छोरा था ब्रह्मा बाबा, बाबा कहते हैं गांव का छोरा था, गांव में रहते थे, हैदराबाद सिंध के भी एक गांव में। उनका पिताजी तो स्कूल मास्टर था, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। अब बताओ क्या होगा उनके पास। लेकिन बाबा ने कैसे अपने जीवन काल में इतनी बड़ी बिजनेस की, जो हीरो के व्यापारी बन गए, राजाओं के साथ उनका उठना बैठना होता था। लेकिन तो जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने कहा बच्चे ये सब कुछ माताओं के हवाले कर दो। तो 8 बहनों के नाम पर सारी प्रॉपर्टी जो बाबा की थी, संपत्ति सब कुछ विल कर दिया। तो बड़े बेटे ने विरोध तो किया, लेकिन बाबा ने कहा अभी मेरा कुछ भी नहीं है। फिर आखिर चलो बहनों ने कहा कि मांग रहा है दे दो, पर बाबा ने उनको कहा अच्छा तुमको बिजनेस चालू करनी, अपना कुछ करना है लो, लेकिन कर्जे के रूप में लो, फिर वापस लौटाना है क्योंकि ये हमारा धन नहीं है। यानी इतने हद तक बाबा न्यारे बने, इतने हद तक। तो ये थी बाबा की, आगे कोई कम परीक्षाएं आई क्या? लेकिन बाबा कैसे थे, संपन्न संपूर्ण बन गए। तो इतना ऊंचा बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तो कैसे बनेंगे, सर्वगुण कैसे आएंगे? तो और कुछ नहीं करना है, रोज अपना चार्ट देखना है, कौन से गुण की मेरे अंदर कमी है। और सबसे सहज काम है एक एक से गुण लेना है, एक एक से गुण लो तो सर्वगुण संपन्न अपने आप हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो, ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं सब। आखिर हर एक में चलो 99% अवगुण होंगे, पर एक तो गुण जरूर होगा, वो एक गुण उनका चोरी कर लो। क्योंकि कहा जाता है ना, गुण जो होते हैं ना वो सिखाई नहीं जाते हैं, गुण सिखाई नहीं जा सकते हैं। अब मेरे अंदर सहनशीलता है, मैं कैसे आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं अपने व्यवहार से आपको प्रेरणा दे सकती हूँ, यही कर सकती हूँ। मेरे अंदर शांति है, मैं आपको शांति कैसे दे सकती हूँ, हाँ संकल्प दूं कि आप भी शांत स्वरूप हो, आप भी शांत स्वरूप हो। चलो वाणी से शांति के शब्द बोलूंगी, मेरे व्यवहार में मैं शांति दिखाऊंगी, तो आप उनसे प्रेरणा लेंगे। पर कोई चीज तो नहीं है जो मैं आपको दूंगी और आप उसको लेंगे, वो तो नहीं है। इसलिए कहा जाता है गुण जो होते हैं ना वो सिखाए नहीं जाते, वो तो ग्रहण किए जाते। एक है सिखाना, ऐसे ऐसे तो कोई थियरी सिखाते, थियरी तो कुछ है नहीं। और दूसरा होता है गुण ग्रहण करना। तो कई बार बाबा कहते हैं और कोई कभी कोई चीज नहीं उठाना, चोरी नहीं करना, लेकिन गुण चोर भले बनो, इसकी छुट्टी है हा? गुण चोर, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका गुण चुरा लिया। हालांकि उसका कोई कम नहीं होगा लेकिन आपने उसका अवश्य गुण चुरा लिया। तो इसीलिए तब हम बहुत सहज सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं। तो इसीलिए कमियों को नहीं देखना, किसमें कोई भी कमी हो, किसी को देखने की जरूरत ही क्या है उस प्रकार से, क्योंकि कलयुगी दुनिया में तो आदत है, चाहे कितने भी गुण होंगे ना, पर एक अवगुण होगा वो एक अवगुण ही दिखाई देता है, वो 99% जो गुण है वो दिखाई नहीं देते हैं। और बाबा कहते 99% अवगुण हो, पर एक गुण भी होगा जरूर छिपा हुआ, वो गुण छिपा हुआ जो है वो लेना है। तो वो कैसे लेंगे, इतनी ही हमारी योग की अवस्था होगी। तो यहाँ अगले 3 दिन ऐसा योग की कमाई करना, तपना, एक बाबा दूसरा ना कोई, कोई देहधारी याद ना आए। कहा जाता ना आप मोए मर गई दुनिया, बस यही समझना ये 3 दिन। ओम शांति। चलो बाकी तो मिलते रहेंगे रोज सुबह मुरली में, तो मिलते ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी ने हमें अपनी दिव्य ओजस्वी वाणी से लौकिक से अलौकिक और अलौकिक से संपन्न और संपूर्णता का रहस्य बड़े ही सरल सौम्य दिव्य महावाक्यों से उच्चारित करके हमें उम्मीद जगा दी कि हम इन 3 दिन के अंदर अपनी संपन्नता और संपूर्णता को अवश्य प्राप्त कर ही लेंगे और उसको जो अपने ब्राह्मण जीवन में सदा कायम रखेंगे। हम आदरणीय दीदी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक हाथ उठाकर आश्वस्त करते हैं कि दीदी हम ब्रह्मा बाबा को अपने सन्मुख रखते हुए हर परिस्थिति को स्वस्थिति से विजयी बनाएंगे। ऐसा ही ना दीदी? थैंक यू दीदी।